हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के गीतामृत कार्यक्रम में। भगवद गीता का चौथा अध्याय और ये नवा श्लोक सुप्रसिद्ध श्लोक है, न केवल इस अध्याय का बल्कि भगवद गीता का। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आज अंतिम भाग हम ले रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये जन्म कर्म चमे दिव्यम श्लोक शुरू किया, हमारे अमित देसाई प्रभु कह रहे हैं कि सितंबर डेट के साथ याद है उनको, 14 सितंबर 2014 हमने शुरू किया था ये श्लोक, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अगले द्वापर युग तक तो नहीं चलने वाला है, भगवान का फिर से अवतरण हो जाए। तो नहीं, आप लोगों की तसल्ली के लिए आज ये 35वां और अंतिम भाग केवल इस श्लोक का। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये पूरा श्लोक एक स्लाइड में आपको बता दिया गया है यहां पर कि जन्म कर्म भगवान का दिव्य, भगवान ने अपने ही श्रीमुख से कहा। तो इस श्लोक में ये इतना कंसाइज और परफेक्ट श्लोक है कि इस एक श्लोक में भगवान ने अपने स्वयं के विषय में बताया है कि वो कौन है, अर्थात उनके जन्म और उनके कर्म। तो भगवान कौन है इसके विषय में बताया, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमारा संबंध भगवान से क्या है, या हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है कि उन्हें तत्वतः जानना है। तो नोइंग तत्वतः, उनके दिव्यता को, उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः जानना। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि क्या फायदा होगा उनके जन्म की दिव्यता को तत्वतः जानने से, फायदा क्या होगा, पुनः जन्म नहीं। आज हम इसका परिचय देंगे, हाउ सक्सेस इज रीडिफाइंड अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर्स। तो इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति डर जाए, जन्म नहीं, तो भगवान कह रहे हैं कि कहां जन्म प्राप्त होगा, उनके धाम कृष्ण लोक में जन्म प्राप्त होगा। तो ये एक श्लोक में भगवान ने हमारे मनुष्य जीवन कि संपूर्ण सर्वोच्च सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जा सके ये बता दिया है। तो हमने पिछली बार भगवान के कर्मों के विषय में चर्चा करते हुए जो दश अवतार है, अब देखिए भगवान अपने विभिन्न अवतारों में, यहां पर तो हमने केवल दश अवतार के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा की थी पिछले बार, भगवान के जितने विभिन्न अवतार हैं उसमें भगवान ने अपने कर्मों के द्वारा, न केवल जन्म बल्कि कर्मों के द्वारा भगवान ने यह दर्शाया कि कैसे भगवान जब भी अवतरित होते हैं, जिस किसी रूप में अवतरित होते हैं, जो भी भगवान कर्म करते हैं उस रूप में कैसे भगवान परिपूर्ण हैं, और भगवान के ही जन्म तत्वतः जानने योग्य हैं। भगवान वामन देव के रूप में एक भिखारी, एक भिक्षुक बनकर आए, तो भगवान वामन देव के रूप में उन्होंने दिखा दिया कि भिक्षुक की परिपूर्णता क्या है, हाउ इफ ही बिकम्स अ बेगर ही बिकम्स अ परफेक्ट बेगर, इफ ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्शन हीरो, नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है। मैंने एक बार एक सेमिनार लिया था बंबई के कॉलेज में नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष पर, हमारा वीकली प्रोग्राम नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही पड़ा, तो मैंने सोचा ठीक है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स कुछ नए थे, काफी नए थे, तो उनके लिए नरसिंह भगवान की लीला सुनानी थी मुझे, तो पोस्टर्स के द्वारा एडवर्टाइज किया गया कॉलेज में, बाकायदा पोस्टर्स के द्वारा हमने एडवर्टाइज किया, और लेक्चर का टाइटल था द एंग्रीएस्ट यंग मैन। एंग्री यंग मैन के बारे में सुना होगा, यहां पर एंग्रीएस्ट यंग मैन, व्हेन लॉर्ड कम्स एज एन एक्शन हीरो ही इज द बेस्ट, व्हेन द लॉर्ड कम्स एज अ रोमांटिक लवर कृष्णा ही इज द बेस्ट, व्हेन द लॉर्ड कम्स एज अ फैमिली मैन लॉर्ड राम, सारे उत्तरदायित्व निभाए एक पारिवारिक मनुष्य होने के नाते। तो अब देखिए भगवान के कर्म क्यों और कैसे दिव्य हैं कि वो कोई भी अभिनय करें, कोई भी अभिनय करें उसे परिपूर्णता से करते हैं। तो हमने भगवान के कर्म की दिव्यता के विषय में पिछली बार ये तीन मुद्दे लिए थे कि क्यों भगवान के ही कर्म दिव्य बताए गए हैं, क्योंकि वो अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, अचिंत्य है। इसलिए गजेंद्र जो एक हाथी के शरीर में थे, भगवान के शुद्ध भक्त परंतु एक हाथी के शरीर में, तो गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान के ऐसे अलौकिक, अद्भुत, अचिंत्य रूप के विषय में कहते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति यैवै भगवत प्रपन्न अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्नः, गायन्ति आनंद समुद्र मग्नः, कि भगवान के कर्म और भगवान के कर्म के संदर्भ में उनकी चर्चा एक समुद्र के समान है, और यह समुद्र कैसा है, आनंद समुद्र, जिसके अंदर कोई यदि डूब भी जाए तो वो पार कर जाएगा यह समुद्र। अर्थात गजेंद्र ये कहते हैं कि ये जो भगवान की लीला कथा, उनके कर्म की चर्चा का जो समुद्र है, उसे यदि पार करना है तो डूबना होगा। कहां पर ये लॉजिक समझ में आता है कि आपको कोई समंदर पार करने के लिए डूबना, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, गजेंद्र कहते हैं कि एक ही मेरी इच्छा है, वांछन्ति यैवै भगवत प्रपन्नः, मैं जो शरणागत आपके हुआ हूं प्रपन्न, एक ही मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं बस निरंतर आपके इस आनंद समुद्र में मग्न रहूं। निमग्न रहूं। इसे कहते हैं तत्वतः भगवान के जन्म और कर्म में निमग्न रहना। तो हमने कुछ 11 मुद्दे लिए थे भगवान श्री कृष्ण के कर्म की दिव्यता के संदर्भ में। कृष्ण कर्म इज डिस्कस्ड बाय द मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग्स। 11 रीजंस व्हाई कृष्ण कर्म इज दिव्य। फर्स्ट रीजन, कृष्ण कर्म इज डिस्कस्ड बाय द मोस्ट एडवांस्ड। कौन डिस्कस करते हैं? कोई इस भौतिक संसार के टटपूंजी नहीं, सबसे प्रगत, जो सबसे मनीषी हैं, विद्वान हैं, वो डिस्कस करते हैं। सेकेंड रीजन, कृष्ण कर्म इज अनमैच्ड इन इट्स डिस्क्रिप्शन। हमने पिछली बार चर्चा की केवल प्रभु श्री राम ये एक अवतार भगवान के, उनके नामों को लो या उनके विषय में 100 करोड़ श्लोक रचे गए हैं, केवल प्रभु श्री राम के नाम और कर्म के गुणगान हेतु क्यों नहीं दिव्य होंगे। थर्ड रीजन, कृष्ण कर्म इज नेवर स्टेल। इट इज एंटरटेनिंग एंड इट इज प्यूरिफाइंग। सिक्स्थ रीजन, कृष्ण कर्म इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। कृष्ण कर्म टीचेस ऑल द ह्यूमन लेसन्स फॉर आइडियल लिविंग, शोज द परफेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन इमोशंस। इट इज फॉर ऑल एजेस, कैन बी सीन थ्रू ईयर्स। हम लोग यहां पर जो इतनी चर्चा कर रहे हैं भगवान के जन्म और कर्म के संदर्भ में, तो भगवान का दर्शन, यहां पर दर्शन बंद है, ऑल्टर का दर्शन बंद है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि भगवान को इन चर्म चक्षु से नहीं, बल्कि इन चर्म चक्षु से परे हमें शास्त्र चक्षु कर्ण के द्वारा, हमारे कर्णों के द्वारा भगवान का दर्शन करना है। और फाइनली कृष्ण कर्मा लिबरेट्स हुएवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है 11वां, क्योंकि हम भगवान के ऐसे चर्चाओं के संपर्क में आने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं पिछले 35 बुधवारों से, 2014 से हम इसी प्रयास में हैं कि इनके जन्म और कर्म के संपर्क में आए, है कि नहीं। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो भी मेरे जन्म और कर्म के संपर्क में आने का प्रयास भी करता है, उसका अंततः श्रेय निश्चित है। अब यदि भगवान के कुछ लीला प्रसंग को लें, तो भगवान ने कालिया का जब उद्धार किया, तो कालिया के उद्धार के समय भगवान जब कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तो कालिया को भगवान के चरण वज्र के समान लग रहे थे, परंतु भगवान के चरणों के संपर्क में आने के वजह से कालिया का शुद्धिकरण हो रहा था। और ऐसा शुद्धिकरण हो रहा था कालिया का कि कालिया, वो हालांकि उसके अंदर इतना जहर, ऐसा जहर कालिया के अंदर था कि जमुना के जिस भाग में कालिया रहा करता था, उसके ऊपर से यदि कोई पक्षी भी उड़कर चला जाता तो मरकर नीचे गिर जाता। वो जो जहर की जो वाष्प वहां से उठती, उसके वजह से। परंतु कालिया इतना, और बहुत सुंदर हमारे आचार्य कहते हैं कालिया उद्धार के विषय में, कि भगवान जब कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तो नृत्य करते हुए भगवान कालिया की भाषा में कालिया से वार्तालाप कर रहे। आज दिन तक उसके स्वयं की पत्नियों के अलावा किसी ने कालिया के साथ वार्तालाप नहीं किया था। तो सोचिए, भगवान के साथ उसका वार्तालाप हो रहा है उस द्वंद्व में, तो कालिया का उद्धार, कालिया की पत्नियों का उद्धार, उसके पश्चात बहुत सुंदर कालिया का जब उद्धार हो गया और भगवान ने कहा ठीक है मैं तुझे मारने नहीं वाला क्योंकि तेरी पत्नियों ने बचा लिया है तुझे, उन्होंने प्रार्थना करी कि जो भी है ये हमारा पति है, विधवा हो जाएंगे हम, क्षमा कर दीजिए, ये फिर से ऐसी गलती नहीं करेगा, हम समझा लेंगे, हम तो जरूर समझा लेंगे। तो भगवान ने इसको छोड़ दिया, ठीक है तू निकल जाए यहां से, मारूंगा नहीं, तू निकल जाए यहां। तो अब कालिया थोड़ा डरा हुआ क्योंकि सर्प की योनि में है, तो गरुड़ जी वहां पर नहीं आया करते थे क्योंकि शौबरी मुनि ने एक गरुड़ जी को अल्टीमेटम दे दिया था कि यहां पर जितने इस जमुना में जितनी मछलियां हैं और जो भी सर्प हैं, चाहे कालिया हो जो भी हो, कोई उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो गरुड़ जी नहीं आया कर, लेकिन अब तो कालिया निश्चिंत था जब तक कि जमुना में था, लेकिन अब भगवान ने जाने बोल दिया है तो कालिया डर गए कि गरुड़ आपके वाहन वो यदि मुझे जो एक ताक में है कि मैं कब यहां से बाहर निकलूं और मुझे वो पकड़े तब क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि अरे मैंने नंगे पैर नृत्य किया है तो तेरे फनों के ऊपर मेरे चरण चिन्ह हैं, गरुड़ मेरे चरण चिन्ह देखकर नतमस्तक होगा, तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा वो। तब कालिया उसे ऐसा आश्वासन जब प्राप्त हुआ तो कालिया ने एक प्रस्ताव रखा, बहुत ही अब उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस जागृत होने लगा कि भगवान ने मुझे शुद्ध किया है, मारा नहीं है और गरुड़ भी नतमस्तक हो जाएंगे मेरे फनों पर इनके चरण चिन्ह देखते हुए। तो कॉन्फिडेंस प्राप्त करते हुए कालिया भगवान से कहता है कि देखिए आपको गरुड़ ध्वज कहा गया है, हर समय गरुड़ जो वाहन के रूप में आपको यहां से वहां ले जाते हैं, कभी कभी कभार इनके यदि गरुड़ को छुट्टी चाहिए, आफ्टर ऑल ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं, कभी ना कभी तो छुट्टी चाहिए होगी उनको, यदि कभी गरुड़ जी को छुट्टी चाहिए तो मैं आपका वाहन बनने के लिए तैयार हूं। और भगवान ने ये बात नोट करी और भगवान अक्सर गरुड़ को छुट्टी देकर कालिया को बुलाते हैं, चलो कालिया यहां चलना है लीला करने के लिए, चलो आज दूसरी कार निकालता हूं मैं जाने के लिए। तो देखिए ये सौभाग्य कालिया का भगवान के सम पूतना, अरे कितने राक्षसों की हम चर्चा करेंगे, पूतना जो कि ऐसा विष लगाकर आई थी भगवान 6 दिन के थे मारने के लिए, और पूतना ने धात्र पद या अपने माता का पद दे दिया पूतना को। अक्सर इस संसार में आप देखते हैं कि आपके साथ जब कोई बुरा करता है तो हमारी मनोवृत्ति क्या होती है, मेरे साथ बुरा किया बस अब देख लेना, अब मेरा वो रूप देखना, तो फिर हम भी उस हिसाब से व्यवहार करते। एक बार एक पिता अपने पुत्र को डांट रहे थे, बहुत से कारण होते हैं पिता पुत्र को डांटते हैं, तो डांट रहे थे और ये सिलसिला जारी रहता, आए दिन पिता पुत्र को डांटते। तो ये लड़का, इसने एक बहुत ही विचित्र नियम बांध लिया, जब भी पिताजी इसको डांटते ये बाथरूम में जाकर टॉयलेट साफ करने लग जाता। तो पिताजी को मांजरा समझ में नहीं आया कि मैं जब भी डांटता हूं ये बाथरूम में जाके टॉयलेट क्यों साफ करता है, तो पूछा, बहुत बहुत दफा हो गया, कुछ हफ्तों से चल रहा था ये सिलसिला, तो पूछा कि भाई तू, मैं तेरे को डांटता हूं, तू तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट साफ क्यों करने लग जाता? नहीं नहीं मैं गुस्सा उतारना चाहता हूं, मुझे बहुत गुस्सा, आप पिताजी हैं, कैसे पिताजी के ऊपर मैं गुस्सा उतारूं? बोला टॉयलेट साफ करने से गुस्सा कैसे उतरता है? बोला आपकी टूथब्रश से करता हूं। तो ये संसार का नियम है, परंतु भगवान के संपर्क में जब कोई आता है, अब देखिए ये नहीं कि भगवान का भला होता है, परंतु अवश्य ही जो संपर्क में आया है उसका तो भला होता ही है। एक ये किस्सा इंग्लैंड में हुआ, बहुत साल पहले मुझे वहां पर एक भक्ति एक किस्सा बता रहे थे। इंग्लैंड में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के एक लेखक हुए, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी थे वो। तो ये लेखक प्रवक्ता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सुना भी होगा आपने, पढ़ा भी होगा उनके लेख इत्यादि। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक मूर्तिकार को कहा, तुम मेरा एक पुतला बनाओ और मैं तुम्हें 100 पाउंड दूंगा इनाम के रूप में, यदि मुझे पसंद आए, वो पुतला पसंद आया तो 100 पाउंड इनाम में दूंगा। तो इसने पुतला बनाया और इतना अच्छा बनाया, हूबहू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसा। तो ये इतना प्रसन्न हुए, तो इन्होंने क्या किया कि 100 पाउंड देना है तो 20 पाउंड के 5 चेक साइन करके दिए उसे, 100 पाउंड हो गए। तो इस व्यक्ति ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे एक चेक 100 पाउंड का दे सकते थे, आपने 5 अलग अलग चेक 20 पाउंड के दिए, ये कुछ समझ में नहीं आया ये लॉजिक। तो उन्होंने लॉजिक समझाया, उन्होंने कहा कि देखो मेरा जो सिग्नेचर है, सब लोग मेरा सिग्नेचर मांगना चाहते हैं, ऑटोग्राफ, और आजकल मेरा ऑटोग्राफ बिकता है, और कितने में बिकता है, 30 पाउंड में बिकता है। तो मैंने तुम्हें कितने दिए हैं, 5 चेक दिए हैं मेरे ऑटोग्राफ के साथ, तो कितना हो गया, 150 पाउंड हो गया, एक सिग्नेचर मेरा 30 पाउंड में बिकता है, और मैंने 5 चेक तुझे दिए हैं तो 150 पाउंड हो गए तेरे, तू किसी को देगा तो? उसने कहा अवश्य ही मैं दूंगा। तो ऐसे उसने फिर और किसी को दिया, क्योंकि उसको फिर 100 के 150 मिले। तब इसने पूछा कि ये तो मैं समझ गया कि इसमें मेरा फायदा हुआ, लेकिन आपका लॉजिक क्या था, आपका फायदा क्या? उसने कहा मेरा फायदा यही है कि ये 5 चेक कभी कोई एनकैश नहीं कराने वाला है, तो मेरे 100 पाउंड बैंक में वैसे के वैसे बने रहे। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। तो ये किस्सा मुझे याद आया कि भगवान जब किसी का भला करते हैं तो उसमें भगवान की दिव्यता वैसी की वैसी रहती है, जैसे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का बैंक बैलेंस एज इट इज, लेकिन जो भी उसके सिग्नेचर के संपर्क में आया उसको बढ़ चढ़कर मिला। तो ये है, ये जो अंतिम पॉइंट है, कृष्ण कर्म लिबरेट्स हुएवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट कृष्ण कर्मा। तो अब हम कुछ चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण चाहे वो आध्यात्मिक संसार में अपनी लीला कर रहे हों, चाहे वो यहां पर अवतरित होकर लीला करें, क्यों भगवान जब अपने इतने अवतारों में आकर और विशेष रूप से स्वयं साक्षात अवतारी कृष्ण वो आते हैं, फिर भी हम संभलते नहीं। वी आर मिजरेबल बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू एंजॉय विथ कृष्णा, वी वॉन्ट टू एंजॉय लाइक कृष्णा। प्रॉब्लम क्या है हमारा यहां पे? ये भगवान के जो पार्षद हैं, अभी उसकी हम चर्चा करेंगे, भगवान के पार्षदों की, व्हाई दे आर एक्सटैटिक, बिकॉज दे वॉन्ट टू एंजॉय विथ कृष्णा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो कहा, द गोल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू एंजॉय अ नाइस पिकनिक ऑन द बैंक्स ऑफ जमुना विथ कृष्णा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, एंजॉय विथ कृष्णा, एंजॉय लाइक कृष्णा। इफ यू एंजॉय विथ कृष्णा यू विल एंजॉय मोर देन कृष्णा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ भक्ति। बट इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय लाइक कृष्णा देन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज वेलकम फॉर अस। ये है बहुत सिंपल सीक्रेट, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, जो भगवान कह रहे। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि मनमोहक हैं, द सुप्रीम एंचेंटर, अब इनके विषय में हम यदि भगवान की ब्रजलीलाओं में से कुछ नमूने लें, तो जो गोप और गोपियां, अब देखिए इन दोनों में होड़ मची रहती थी, स्पर्धा, परंतु वो स्पर्धा भौतिक संसार की स्पर्धा के समान नहीं हुआ करती थी। तो क्या होड़ क्या स्पर्धा, कि गोप वो प्रतीक्षा में रहते कि कब सूर्योदय हो, क्योंकि सूर्योदय हुआ तो अब कृष्ण के साथ वन में जाने का यह मौका मिलेगा। तो गोप सूर्योदय की ताक में रहते और गोपियां वो सूर्यास्त, क्योंकि सूर्यास्त के समय भगवान अब सब गोपों के साथ, गौओं के साथ, बछड़ों के साथ फिर लौट रहे हैं। गोधूली लीला भी बोलते हैं ना उसको, या बेला, गोधूली बेला। उस समय तो गोपियां उसके ताक में रहते, तो जब भी सूर्योदय होता तो गोपियां वो कोसती सूर्य को, और गोप जो हैं वो सूर्य को नमस्कार करते, हां आप उग गए बस, और भागते भगवान श्री कृष्ण के भवन या नंद भवन भागते, जहां पर भगवान का अपश्रृंगार प्रारंभ होता है। यशोदा मई सुबह सुबह भगवान को जल्दी उठाकर श्रृंगार प्रारंभ करती, और श्रृंगार ये गोप ये स्वयं का श्रृंगार इतना नहीं करते, जल्दीबाज में जो भी कुछ पहनकर ये आ जाते, ये यशोदा मई की सहायता में लगते और कृष्ण का श्रृंगार करने में, दे वुड हेल्प यशोदा मई। तो जो थोड़े अग्रज, वो भगवान का जो मोर मुकुट है उसको सजाते, भगवान के फेटे को सजाते, जो साक्षरस में हैं, जो भगवान के हम उम्र के, वो भगवान का पीतांबर और भगवान की माला और ये सारे मणि वगैरह इत्यादि ये लगाने में, और जो भगवान से छोटे जूनियर वो भगवान की पायल और पादतरण वगैरह इत्यादि वो सजाने के लिए लगा। तो भगवान रूप गोस्वामी कहते हैं भक्तिर सामर सिंधु में, कि एक बार भगवान एक गोप जो भगवान की पायल लगा रहा था, यशोदा माई बोल रही थी कि ठीक है तू पायल लगा, उसको कुछ ना कुछ करना था, कुछ नहीं मिल रहा था, तो यशोदा माई ने पायल दे दी, चलो पायल लगा। तो भगवान बांसुरी से उसे मारे जा रहे, और यशोदा माई को समझ में नहीं, और इसको लग रही है और ये लगा नहीं पा रहा, ये लगाने की कोशिश कर रहा है और भगवान बांसुरी से मार के उसको हिला रहे हैं, उसको लगाने नहीं दे रहे। तो आचार्य कहते हैं भगवान इस प्रकार से जानबूझकर किया करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा समय वो मेरे चरणों में बिताए। तो गोप और गोपियां, गोपियों के विषय में बताया गया है कि कई ऐसी गोपियां जिनकी उम्र बहुत कम प्रतीत होती थी, मंजरियां, गोपियां, कई ऐसी बहुत छोटी कम से उम्र की ये गोपियां, तो इनके विषय में आचार्य कहते हैं कि ये चावल के उस दाने के समान होती जो बाहर से अधपका दिखता है, दिखने में अधपका है बाहर से परंतु अंदर से पूरा पका हो, ऐसा चावल का दाना जो बाहर से कच्चा लग रहा हो, वैसे ही ये गोपियां बाहर से कम से नौर कच्ची लगती थी परंतु अंदर से इनके अंदर जो प्रेम था भगवान के प्रति वो इतना परिपक्व था कि भगवान जब निकलते, सुबह के समय जब निकलते, तो जब तक भगवान उनके दृष्टि से अगोचर नहीं होते, दृष्टिगोचर नहीं हो जाते, तब तक टकटकी लगाए हुए वो सी ऑफ कर, रोज रोज का ये सिलसिला था। ऐसा नहीं कि भगवान बस जब 11 साल बाद जब मथुरा गए तभी, नहीं, हर रोज यही कार्य होते। और फिर दिन भर जो भगवान ने पिछले दिन और उस दिन सुबह जाने से पहले जो लीलाएं की उसकी चर्चा दिन भर चलती रहती, होल डे दिन भर चलती रहती। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, इस प्रकार से एक दूसरे को केवल प्रोत्साहित करती, भगवान के विभिन्न नाम, विभिन्न लीलाएं, उनकी चर्चा करती। अच्छा, अब भगवान गोपों के साथ, गायों के साथ, बछड़ों के साथ निकल पड़े हैं वन की ओर। तो वन में क्या, ये बहुत सुंदर लीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने ये वर्षा का ऋतु जब प्रारंभ होने वाला होता है तो जो मोर हैं वो बहुत उत्साही होते हैं। तो ये मोर, इन्होंने जब भगवान को देखा एक दिन तो ये नाचने लगे, तो भगवान ने इन मोरों को, नहीं नहीं स्टेप्स ठीक नहीं तुम्हारे, तो ये मोर भगवान की ओर देख रहे हैं कि हम ठीक से नहीं नाच रहे। तो भगवान स्वयं अपनी धोती ऊपर करते हैं, वो बेल्ट को टाइट करते हैं, कमर पट्टे को टाइट करते हैं, और भगवान इन मोरों को सिखाते हैं नाचना। और ये ऐसा दृश्य उस समय कोई गोपी नहीं, कोई गोप नहीं, केवल भगवान और चारों ओर भगवान के केवल मोर ही मोर। ये भगवान का अरेंजमेंट होता कि मुझे यदि इन मोरों को मेरी कृपा देनी है तो बस केवल इनको देनी। तो बड़े बड़े देवता ऊपर से जब वो देखते तो वो बहुत चक्का रह जाते कि ऐसा नृत्य आज तक हमने देवलोक में भी नहीं देखा, ऐसा नृत्य भगवान सिखा रहे, डांस टीचर बनते इन मोरों का, और ये मोर ऐसा नृत्य सीखे भगवान से, तो इनका जो सरदार, मोरों का जो सरदार, वो भगवान के पास आता है। अब पूरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, वो भगवान के पास आता है और कहता है कि आपने हमें नृत्य सिखाया, आप हमारे गुरु हुए, तो हमें कुछ गुरु दक्षिणा आपको देनी चाहिए। तो क्या गुरु दक्षिणा? तो क्योंकि ये लोग अब सीख रहे थे नाच, तो नाचते नाचते इनका पंख नीचे गिर चुका था। देखिए ये भगवान की सरलता। तो भगवान ने कहा वो जो पंख नीचे गिर चुका है मुझे वो पंख दे दो गुरु दक्षिणा में। और ये मोर शर्मिंदा हुए कि हमारे शरीर से गिरा हुआ भूमि पर ये पंख, ये गुरु दक्षिणा में ये मांग रहे हैं। तो भगवान अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, तो वो अपना गिरा हुआ पंख जब भगवान को देते हैं, उस दिन से भगवान वो पंख लेकर अपने मुकुट में, अपने फेटे में बांधते हैं, और तब से भगवान कहे गए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो तब से मोर मुकुट उनके ऊपर उन्होंने धारण किया है। और इसके पश्चात वर्षा ऋतु में जब भी ये मोर जहां कहीं पर भी पूरी सृष्टि में जब भी ये वर्षा ऋतु के घने बादलों को देखते हैं तो नृत्य करना क्यों प्रारंभ करते हैं? क्योंकि वो उनके आराध्य गुरु डांस टीचर को याद करते हैं, क्योंकि वही वर्ण के हैं भगवान घनश्याम। तो इनको देखते हुए जो कोयल ने सोचा कि यदि ये मोर ये इतना अच्छा नृत्य के द्वारा भगवान को प्रसन्नता दे रहे हैं तो चलो हम भी, वो कूजने लगते हैं। कोयल कूजती है, मोर नाचते हैं, तो जो जो उनकी स्पेशलिटी, तो कोयल कूजने लगती है। तो जब कोयल कूजने लगती है तो भगवान कोयल को कहते हैं मैं बताता हूं कैसे कूजा जाता है। और फिर कोयल से ज्यादा हजार गुना ज्यादा मधुर कंठ से भगवान जब कूजने लगते हैं तो ये कोयल को भगवान सिखाते हैं कि कैसे कूजना है। अब आगे हिरण देखते हैं, तो हिरण जब भगवान को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि न तो हम कूज सकते हैं कोयलों की तरह, न हम नाच सकते हैं मोर की तरह, परंतु हिरण इनमें विशेषता क्या है कि हिरण की आंखें बहुत सुंदर होती है, वो आंखों से बता सकते हैं कि उनके अंदर का भाव क्या है। तो जैसे बोलते भी है ना, हिरणी जैसी आंखें, तो हिरण की जो आंखें इतनी सुंदर होती है। अब देखिए ये क्या सेवा कर रहे हैं भगवान की, केवल भगवान को अपनी आंखों से निहारते हैं, बस ये सेवा है, इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। इनके निहारने पर भगवान प्रसन्न हो जाते। बंदर, ये बंदर याद करते हैं कि हमने वो जो सेतु बांधा था और उस समय हमने जो सेवा करी थी इन्हीं हमारे आराध्य की, आज वो हमारे मध्य, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इनको माखन खिलाया करते थे, इनके साथ खेला करते थे, इनको फल इत्यादि दिया करते थे। तो ये बंदर, ये सब इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और बंदरों ने कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि जब भी हमारे आराध्य और उनके पार्षद वन में जब खेलने आए, विचरण करने आए, तो हम में से कोई मस्ती नहीं करेगा। और वृंदावन में इस चीज का मानना है कि वहां के जो ब्रजवासी हैं वो जब भगवान की चेतना में, भगवान के पार्षद के रूप में निवास करते हैं तो बंदर उनके ऊपर कभी कोई मस्ती का प्रहार नहीं करते, और जो वहां पर उस चेतना में नहीं जाता बंदर उसे छोड़ते नहीं। वृक्ष जैसे भगवान कहीं से भी गुजरते, सब जगह पर वृक्ष, कल्प वृक्ष, वन में तो वृक्ष ही वृक्ष हैं, तो भगवान कृष्ण बलराम विशेष रूप से जहां कहीं से भी गुजरते ही तो ये वृक्ष झुक झुक कर, ये पहले से लदे होते फलों से ये और झुकते, भगवान को देखते कृष्ण बलराम गुजर रहे हैं तो ये और झुकते नमस्कार करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण थोड़ा शर्मा जाते क्योंकि बड़े भाई साथ में हैं, तो शर्माते हुए कहते हैं कि दाऊजी देखो आपको देखकर दंडवत कर रहे हैं, आपको देखकर दंडवत कर रहे हैं। दाऊजी भी थोड़ा सोचते हैं हाँ शायद मेरे को देखकर कर रहे हैं, मैं बड़ा भाई हूं, तो भी थोड़ा सीना और तान के चलते। और फल जैसे अमल की फल ये फल हर समय तात में रहते कि कब कृष्ण बलराम और उनके संगी हमें लेंगे और हमारे साथ गेंद गेंद खेलेंगे, ये उस ताक में रहते। आम, आम किस ताक में रहते? क्योंकि कभी कभी भगवान कच्चे आम तोड़ते, कभी 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 पके हुए आम तोड़ते, तो जो कच्चे आम होते वो अपने आप को पके हुए आम का वंशज मानते कि हम इनके संतान हैं, क्योंकि हम अभी कच्चे हैं। तो जो कच्चे आम हैं, जब उनको भगवान तोड़ते नमक के साथ खाने के लिए और एकदम खट्टा लगता उनको, उसमें खाने में मजा आता, तो कच्चे आम को जब भगवान तोड़ते खाने के लिए, तो पके हुए आम वो गर्व महसूस करते कि अरे देखो हमारे बेटे कैसी सेवा में लगे हुए। और जब कभी भगवान पके हुए आम तोड़ते तो कच्चे आम वो सोचते कि अरे हमारे माता पिता देखो कितने भाग्यशाली हैं कि उनको भगवान उनका आस्वादन कर रहे हैं। तो चाहे वो आम कच्चे हों या पके हों, भगवान को वो प्रसन्नता देते। भूमि, भगवान चलते, एक तो भगवान कोई पात्रण नहीं पहनते, नंगे पैर। इसलिए भगवान को एक बार पूछा माता यशोदा ने कि तू ये नंगे पैर क्यों जाता है? हाँ तू, अरे हम क्या गरीब हैं? क्या हमारे पास चप्पलें नहीं है तुझे देने के लिए? तू नंगे पैर क्यों जाता है? तो भगवान ने माता यशोदा से कहा कि मैया, मैंने देखा है कि मैं जब चलता हूं तो जो मेरे पदचिन्ह बनते हैं वृंदावन की रेती में, जब मेरे पदचिन्ह बनते हैं तो सबकी नजर ये हिरणों की, ये बंदरों की, गोपों की, गोपियों की नजर उस पे टिकी रहती है। तो जब उनकी नजर उस पे टिकी है तो मैं कैसे अब उसके ऊपर मैं केवल पादत्राण पहनकर जाऊं, क्योंकि उसमें चिन्ह नहीं दिखेंगे, मेरे तलवों के चिन्ह नहीं दिखेंगे, तो इनकी नजरें कैसे टिकी रहेंगी उसके ऊपर? बहुत से कारण बताए हैं कि वो क्यों नंगे पैर घूमते हैं भगवान। तो भूमि देवी, भूमि देवी का सौभाग्य कि भगवान भूमि देवी के ऊपर बिना चप्पलें, तो वो ऐसे मुलायम घास पैदा करती है भूमि देवी भगवान के लिए, कि यदि ऐसे मुलायम घास पर कोई चप्पल पहने तो अपमान है, वो घास का, भूमि का अपमान। और उसके साथ साथ जो गाय और ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार की गाय भगवान उनके साथ जो आदान प्रदान करते, विशेष रूप से हर एक रंग की गाय, यदि श्वेत वर्ण की गाय है तो भगवान उन सब का एक गुट बनाए थे और उनका नाम, सबका नाम भगवान, 9 लाख गायें थी बाय द वे, 9 लाख गायों का सबका नाम भगवान को याद, कि जो श्वेत वर्ण की है धवली इत्यादि उनको बुलाते, फिर बाद में यदि कोई ब्राउन रंग की है, भूरे रंग की है तो उसको उस हिसाब से बुलाते, ए अरुणी, कोई यदि पीली रंग की है तो ए पिंगा, चित्रा, चित्रलेखा, हमसिनी इत्यादि, इस प्रकार से गायों का नाम बुला बुला कर। और ये गायें केवल ये सोचती कि सारा विश्व ये गोपाल का नाम लेता है माला पर, और ये गोपाल माला लिए हमारे नाम लेते हैं, ये इनका सौभाग्य। अच्छा, ये इनका बहुत विशेष योगदान रहता है भगवान की लीलाओं में, ये तितलियों का और विशेष रूप से भंवरों का। तो ये भंवरों के विषय में बताया है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये भंवरे, ये ऐसी जाति वृंदावन में कि भगवान जहां कहीं पर भी जाते ये भंवरे मंडराते रहते, मंडराते रहते, भगवान के इर्द गिर्द इर्द गिर्द मंडराते रहते। इसलिए कई ऐसी जगह होती जहां पर गोपियां अलाउड नहीं थी, जैसे गोपों के साथ जब भगवान जाते थे तो गोपियां अलाउड नहीं थी वहां, और भगवान जब गोपियों के साथ रहते थे तो गोप अलाउड नहीं थे, परंतु ये भंवरे ये सब जगह अलाउड थे। यहां तक कि भगवान नहाने के लिए भी गए तो वहां पर भी ये भौरे मंडरा रहे मंडरा रहे, रात के समय भी भगवान के इर्द गिर्द और वो भिन 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 करते हुए आवाज करते हुए, वो हर समय बैकग्राउंड म्यूजिक चालू रहता है इन भौरों का। अब देखिए, और भगवान चिढ़ते नहीं थे कभी। साधारणतः कोई व्यक्ति जब कोई 24 घंटे किसी के इर्द गिर्द घूमता रहे तो चिढ़ जाएगा कोई, अरे तुम जा यार। लेकिन भगवान कभी चिढ़ते नहीं थे, 24 घंटे ये भौरे भिन 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 करते हुए कभी चिढ़ते नहीं। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के एक ब्रह्मचारी बता रहे थे, वो एक दूसरे ब्रह्मचारी प्रचारक से बात कर रहे थे, तो वो रिसेंटली ज्वाइन किए थे राधा गोपीनाथ मंदिर, तो बोल रहे थे कि प्रभु जी ऐसा है कि मैंने देखा हम लोग जब नए नए मंदिर में आए तो आप हमारे पीछे ही रहते थे, कब आओगे प्रोग्राम के लिए, आए नहीं, अच्छा आ गए, अच्छा बैठो, अच्छा माला कितनी, अच्छा ये लो प्रसाद लो, आप हमारे पीछे ही, और हम दूर भागना चाहते थे, बार बार आप पकड़ पकड़ के हमको आगे ही बिठाते। अब हमने आश्रम ज्वाइन कर लिया है, अब हम आपका टाइम मांगते हैं, आप भागते रहते इधर उधर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें एक समय के बाद एकांत चाहिए। ये हमारा मन कैसा है कि जब बहुत भीड़ भड़क का होता है, अरे कब एकांत मिलेगा, और एकांत वो ज्यादा हो गया, अरे अकेला पड़ गया। परंतु भगवान के ये जो भौंरे इर्द गिर्द घूमते, ये भौंरे कभी भगवान को चिढ़ नहीं आती इनके साथ। इसलिए रूप गोस्वामी भगवान के इन सब पार्षदों को कहते हुए सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान जब अपनी बांसुरी बजाते हैं तो भगवान की ये जो बांसुरी है ये इतनी मधुर है, और इसमें हमने इसकी चर्चा की थी भगवान की बांसुरी के विषय में कि इसमें इतनी वैरायटी है, भगवान की बांसुरी में इतनी वैरायटी है, सम्मोहिनी वेणु मुरली इतनी वैरायटी इसके अंदर है कि भगवान वैरायटी के अनुसार बरहा पीड़म नटवर वपु, बहुत सुंदर ये उद्गार है गोपियों का जिसके अंदर वो भगवान के ऐसे स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अधर सुधया रंध्रान वेणु, इस श्लोक में वो कहते हैं कि भगवान जब अपने अधरों पर वेणु रखते हैं और बजाते हैं तो जो पत्थर हैं, वृंदावन के पत्थर हैं, वो पिघलकर बहने लगते हैं, जहां से ध्वनि आ रही है उस दिशा में बहने लगते हैं, और जमुना जो कि बहती हुई नदी है वो पत्थर बन जाती है, रुक जाती है, क्योंकि वो ध्वनि से दूर नहीं जाना चाहती। और गोपियां, गोपियों के विषय में कहा गया है कि सुबह सुबह भगवान बांसुरी बजाकर निकल जाते हैं अपने मित्रों के साथ, तो जो धुन भगवान ने सुबह बजाई थी जाते समय, दिन भर गोपियों को वो धुन सुनाई देती रहती है। भगवान अब नहीं बजा रहे परंतु दिन भर उनको वो धुन सुनाई देती रहती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जिनको कहा गया है द सुप्रीम एनचैंटर, तो भगवान के विशेष उनके गुणों के बारे में रूप गोस्वामी कहते हैं सुपंडिता, कि भगवान ऐसे पंडित हैं, ऐसे विद्वान हैं कि ऐसी कोई भी युक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जिसमें भगवान उसके विषय में न जानते हो। फिर न केवल बुद्धि बल्कि सुबुद्धि। अच्छा, ये एक बहुत विशेष गुण रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान का, निर्णायक शिरोमणि। जब जरासंध 17 बार उसने आक्रमण किया और हार गया, उसके पश्चात भगवान अचानक रण छोड़कर क्यों भागने लगे, तो रूप गोस्वामी कहते हैं क्योंकि उस समय भगवान जो कि निर्णायक शिरोमणि है, बेस्ट इन डिसीजन मेकिंग, तो भगवान ने सोचा कि यही समय है जब रुक्मिणी वो अपना पत्र भेजने वाली है, तो इसलिए भगवान ने प्रायोरिटी देखी कि ये जरासंध से कौन लड़ेगा, बोर हो गया 17 बारी से लड़ लड़, अभी थोड़ा रोमांस जाके करते हैं, एक्शन बहुत हो गया अब थोड़ा रोमांस कर, होता ना मूवी के अंदर अगर पूरा ही एक्शन हो तो पब्लिक बोर हो जाती, पूरा ही रोमांस हो एक्शन भी नहीं हो तो भी बोर हो जाती, तो इसलिए भगवान भी बोर हो गए चलो थोड़ा रोमांस करते, तो इसलिए उनको निर्णायक शिरोमणि कहा गया इसके विषय में। फिर विविध अद्भुत भाष्य, भगवान हरेक योनि की जो भाषा है वो जानते हैं, इसलिए जैसे कालिया के साथ वार्तालाप भगवान कर रहे थे, भंवरों के साथ वार्तालाप करते, तोतों के साथ वार्तालाप करते, बंदरों के साथ, मेंढक के साथ, सबके साथ भगवान उनकी भाषा में वार्तालाप करते। और फाइनली भगवान को बताया गया है दक्ष शिरोमणि। ये दक्ष शिरोमणि भगवान को क्यों बताया है? अरिष्टासुर, अरिष्टासुर जो कि एक बहुत बड़े सांड के रूप में आया था, सांड के रूप में अरिष्टासुर आया था। अब से कि ये इतना विशाल था ये अरिष्टासुर कि जो पीछे उसका जो हंप है वो बादलों में जा रहा था, और भगवान छोटे से, तो सामने चिंघाड़ता हुआ ये अरिष्टासुर आ रहा है भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए, और भगवान अपने एक गोप के कंधे पर एक हाथ ऐसे रखे हुए और दूसरे हाथ से भगवान जो है वो पोएट्री कंपोज कर रहे थे, और अपने आंखों से गोपियों के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। ये अरिष्टासुर आ रहा है इस टाइम और उसको एक लात से मार रहा है, ये सब साइमल्टेनियसली भगवान एक साथ कर रहे हैं। तब रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति अरिष्टासुर जैसे राक्षस के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, साइमल्टेनियसली इतनी सारी चीजें, उसको दक्ष शिरोमणि, कई बार हमारे हरे कृष्णा के भक्त भी बन जाते हैं, चैंटिंग भी चल रहा है, ड्राइविंग भी चल रहा है, फोन पे बात भी चल रही है, रीडिंग भी चल रहा है, और हवलदार को भी देख रहे तो हमारे डिवोटी भी दक्ष शिरोमणि बन जाते हैं भगवान की तरह। तो अब हम आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ईश्वर को मानना और इसकी तुलना में ईश्वर की मानना। अक्सर भारत में क्या देखा जाता है, ईश्वर को सब मानते हैं, हाँ मैं ईश्वर को मानता हूं, भगवान को मानता हूं, भगवान की मानते हैं क्या, ये क्या होता है? भगवान की मानना, ये भगवान ने आज के श्लोक में कहा है कि अर्जुन मेरा जन्म मेरा कर्म मैंने तो कर दिया उसको दिव्य रूप में, अब ये उत्तरदायित्व तो हमारा है कि हम तत्वतः जाने। इसलिए हम आते हैं ये इस शब्द पर तत्वतः। तो तत्वतः का अर्थ क्या होता है? जैसे कि तत्व, हम यदि नमक का उदाहरण लें या जल का उदाहरण लें, तो नमक दो तत्वों से बना है, सोडियम और क्लोरीन, ये दो तत्वों से नमक बना है, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तत्वों से बना है। वैसे ही हम यदि किसी वस्तु को व्यक्ति को तत्वतः जानना चाहते हैं तो पता करना है कि वो किन तत्वों से बना है। जैसे कि पर्वत, अब यहां पर ये जो पर्वत का चित्र आप लोग देख रहे हो तो दूर से आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, परंतु तत्वतः पर्वत को यदि जानना है तो आप जब प्रवेश करोगे पर्वत के निकट जाओगे तो क्या क्या दिखाई देगा? अरे वृक्ष दिखाई देंगे, ये घनघोर वन दिखाई देगा, वहां पर प्राणी इतने सारे, पशु जानवर, नदियां झरने, क्या कुछ नहीं, तब जाकर समझ में आएगा कि आपने पर्वत को तत्वतः देखा है। समंदर, समंदर का तत्वतः ज्ञान क्या है कि दूर से आपको समंदर की लहरें दिखेंगी, तट दिखेगा, परंतु समंदर कितना विशाल, उसके अंदर कितने सारे जल के प्राणी, एक पूरा साम्राज्य होता है समंदर के अंदर, इतने सारे मणि होते हैं। तो समंदर को यदि तत्वतः जानना है तो समंदर की गहराई में जाना होगा, पर्वत को तत्वतः जानना है तो पर्वत की गहराई में जानना होगा। इसी प्रकार से जब हम तत्वतः शब्द की बात कर रहे हैं तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि, इनको तत्वतः जानना। अब देखिए, हम जब पहले पहले आते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो हाँ यहां पर सब लोग हरे कृष्णा गा रहे हैं, भगवान का नाम, हाँ ठीक है भगवान का नाम, अर्च विग्रह का दर्शन, भगवान का रूप देख लिया, भगवान का नाम सुन लिया, लीला, अच्छा चलो जन्माष्टमी पर आ गए या कोई एक ऐसे बुधवार के कार्यक्रम में आ गए, भगवान की लीला सुन ली, हाँ हो गया। परंतु उसे तत्वतः नहीं कहेंगे, क्योंकि शुरुआत में होता क्या है कि हम केवल एक बाह्य रूप से उसके कांटेक्ट में आए हैं, परंतु जब हम इच्छा करते हैं कि मैं और जानूं, एक है कि आप अकस्मात आ गए नाम गुण लीला के संपर्क में, और अकस्मात आने के पश्चात जब आप जिज्ञासा करते हैं और जानने की, तो शुरुआत होती है तत्वतः। हमारे इस्कॉन के एक महाराज हैं, बद्री नारायण महाराज, तो बहुत सुंदर वो अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हैं। अमेरिका के हैं ये बद्री नारायण महाराज, तो ये जब अभी तो बहुत सीनियर हैं, ये 30-40 साल हो गए इनको इस्कॉन में, तो ये जब पहली दफा इस्कॉन के मंदिर आना शुरू किए तो ये युवक थे, विद्यार्थी थे, तो हर हफ्ते फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता था इस्कॉन के अमेरिका के एक मंदिर में, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता था, एक तो फ्री है और इतना स्वादिष्ट प्रसाद खिलाते हैं, तो ये रोज हर हफ्ते आ जाते खाने के लिए। अब ये टेंपल मैनेजमेंट बहुत बुद्धिमान था वहां का, उन्होंने क्या किया कि प्रसादम काउंटर लगाया, सारे एक एक कर जैसे हम लोग प्रसादम काउंटर लगाते, और लास्ट में एक बहुत सुंदर कांग्रीगेशन के एक बच्चे को, छोटे बच्चे को डोनेशन बॉक्स के साथ खड़ा कर दिया, और वो मुस्कुराता रहेगा, जो भी वो प्रसाद प्लेट लेके जाएगा मुस्कुराता रहेगा कि आप दिल से जो डालना है इसमें डाल दीजिए। और उसको बताया गया था कि तू केवल सबके सामने मुस्कुराता रहना, तो अभी कोई इतने सुंदर बच्चे को देखकर कुछ ना कुछ डाल ही देता है उसके अंदर, इस प्रकार से वो फंड कलेक्शन भी थोड़ा करते थे। तो ये बद्री नारायण महाराज, इन्होंने सोचा है कि ये बहुत चालू हैं ये हरे कृष्णा वाले, कि प्रसाद इतना अच्छा खिलाते हैं, ये काउंटर लगाए हुए हैं, और लास्ट में इतने ये सुंदर बच्चे को बॉक्स के साथ बिठा देते हैं, ये मुस्कुराता रहता है, तो इन्होंने सोचा चलो मैं भी इनको चकमा देता हूं। तो ये क्या करते थे कि इनके बटवे में दोनों सिक्के भी होते थे, नोट भी होते थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं ठीक है सिक्के डाल दूंगा, लेकिन यदि मैं उसी बटवे से सिक्का निकालूं जिसमें से मेरे नोट पड़े हुए हैं तो दिखेंगे, नोट दिखेंगे, अरे नोट पड़ा हुआ है सिक्का निकाल के डाल रहा है, तो लोगों के सामने अच्छा नहीं लगेगा। तो ये पहले से ही अपने रूम से निकलने से पहले ये उसको दो भाग में कर लेते, राइट साइड में सिक्के, लेफ्ट साइड में नोट, दो उनके जो जेब, उनके दोनों जेब में ऐसे करके, तो जब भी वो प्रसाद लेके, तो फिर उनको पता था कि यहां पे केवल सिक्के हैं, तो सिक्के निकाल के दे देते। तो ऐसा एक हफ्ते हुआ, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, ये बच्चा बेचारा मुस्कुराता रहता, देखता सिक्का डाल रहा है मुस्कुराते। तीन हफ्ते हो गए, चौथे हफ्ते में ये बच्चे ने कहा, प्रभु जी कृष्णा डजंट सी, what you have put in the donation box, Krishna sees what is there in the other pocket. ये जब इन्होंने सुना, बाप रे, इधर के बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, तब सोचा है कि ये मूवमेंट साधारण लोगों का मूवमेंट नहीं है, और तब से फिर वो सीरियस होने लगे। तो तत्वतः जब हम तत्वतः जानने की चेष्टा करते हैं, तब जाकर प्रारंभ होती है हमारी यात्रा तत्वतः की। तो अब तत्वतः में जैसे कि शब्दार्थ होता है, भावार्थ होता है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक है केवल शब्द का अर्थ, परंतु वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, उसको किस भाव में कहा गया है। जैसे मुझे याद है बचपन में ये हिंदी का जो एग्जाम पेपर होता था, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते थे, मुहावरों के ऊपर वाक्य बनाओ, है ना, मुहावरों के ऊपर वाक्य बनाओ। तो मुहावरा था, करे कराए पर पानी फिर जाना, सुना है ना ये मुहावरा, फेमस हिंदी का मुहावरा है, करे कराए पर पानी फिर जाना। तो अब विद्यार्थी को इसके ऊपर वाक्य बनाना था, तो उसने वाक्य बनाया, मैं सुबह सुबह टॉयलेट गया। करे कराए पर पानी फिर गया। अब देखिए, इसको उसने शब्दार्थ को भावार्थ में लाके नहीं बताया, उसका भाव कुछ और है, शब्दार्थ कुछ और है। जैसे अब देखो, संस्कृत की भाषा ऐसी है कि उसके अंदर आप जब तक भावार्थ नहीं जानोगे, तब तक शब्दार्थ सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे इंग्लिश में यदि चेन स्मोकर किसी को कहा गया है कि ये चेन स्मोकर है, तो चेन स्मोकर को संस्कृत में कैसे बोला जाएगा, सुनना चाहेंगे आप? चेन स्मोकर, चेन स्मोकर का अर्थ क्या है? जो केवल एक तीली इस्तेमाल करता है जलाने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो तीली से नहीं जलाता है, वो जली हुई सिगरेट से अगली सिगरेट जलाता है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो चेन स्मोकर का संस्कृत है श्वेत पत्र मंडित धूम्र शलाखा प्रवीण। श्वेत पत्र मंडित धूम्र शलाखा, सुनने में कैसा लगता है? कोई अगर सुनेगा तो बोलेगा मेरे को ग्लोरीफाई कर रहा है चेन स्मोकर कि संस्कृत में मुझे ग्लोरीफाई किया कर। अच्छा, ये एक टेस्ट है आपके लिए, ये एक संस्कृत का, अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक, अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक स्त्री, वस्त्र जो अस्त व्यस्त हो गया है, तो अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक वो है स्त्री। अच्छा, ये आसान होगा, आम्र दुग्ध शर्करा युक्त हिम घनगोल गट्टू, मैंगो आइसक्रीम, आम्र दुग्ध, आम्र मतलब आम, दुग्ध समझ गए, आम्र दुग्ध शर्करा मीठा युक्त हीम ठंडा घनगोल गट्टू। आम्र दुग्ध शर्करा युक्त हीम घनगोल गट्टू, अगली बार आप ऑर्डर करने जाएंगे तो जो भी नेचुरल्स या जो भी आइसक्रीम में आप ऑर्डर करिए कि मुझे एक आम्र दुग्ध शर्करा युक्त हीम घनगोल गट्टू, तब तक आइसक्रीम ही मेल्ट हो जाएगा। कंटक शोधन अधिकारी कौन है? पुलिस की, जो कंटक होते हैं समाज के उनको शोधते रहते हैं, कंटक शोधन अधिकारी पुलिस। तो पॉइंट यहां पर यह है कि एक है शब्दार्थ और एक है भावार्थ, और इसके परे है परमार्थ, कि जो हमें, जो शब्द हमें परमार्थ तक ले जाए, इतना गहराई में जब हम उस शब्द में जाते हैं तब उसे कहते हैं तत्वतः। तो अब भगवान ने इसी अध्याय में कहा है कि तत्वतः को जानना है, या तत्वतः मुझे जानना है तो तत्वदर्शी से जानो। अब तत्वदर्शी का अर्थ क्या है? कि जिसने तत्व का दर्शन किया हो, और दूसरा जो तत्व का दर्शन करा सके। श्रील प्रभुपाद को एक बार उनके एक डिसाइपल ने पूछा कि प्रभुपाद, जब आपने ऐसी पुस्तकें दे दी हैं, ग्रंथ दे दिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, सब कुछ आपने दे दिया है, तब फिर गुरु की जरूरत क्या है, या तत्वदर्शी की जरूरत क्या है? तो प्रभुपाद ने बहुत इंटरेस्टिंगली आंसर किया इस क्वेश्चन को। तो प्रभुपाद ने उसके दोनों कान पकड़े और दोनों कान पकड़कर ऐसे खींचा प्रभुपाद ने ऊपर की ओर, और प्रभुपाद ने कहा, भागवतम विल नॉट डू दिस, भागवतम विल नॉट डू दिस, देयरफॉर यू नीड मी। तो इसलिए तत्वतः भगवान को जानना है तो तत्वदर्शी से। अब आगे की जो पंक्ति है जिसमें भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, अर्थात नो रीबर्थ। जब हम नो रीबर्थ की चर्चा कर रहे हैं तो ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है कि अरे, कई बार हमारे जो ये बर्थडे सॉन्ग्स इस्कॉन के होते हैं, नए लोग उसको सुन के थोड़ा डर जाते हैं। हरे कृष्णा टू यू, तब तक ठीक है, अच्छा हरे कृष्णा, ये लोग ने वही ट्यून में हरे कृष्णा भी गा दिया, हरे कृष्णा टू यू, फिर बाद में बोलते हैं मे यू नेवर टेक बर्थ अगेन, वो बेचारा वो केक काटते काटते वो देखते हैं ये मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि ये क्या कह रहा है। तो सक्सेस किसको कहते हैं? जैसे यहां पर सक्सेस को रीडिफाइन किया गया कि वास्तविक रूप में सक्सेस क्या है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं, या भगवान बोल रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ भगवान ये कह रहे हैं कि जन्म कहां प्राप्त होगा? कृष्ण लोक में, तभी पुनर्जन्म रुकेगा, नहीं तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और यह संसार का नियम यही है कि जब भी आप किसी सफलता को प्राप्त करते हो इस भौतिक संसार में, तो वो सफलता ऐसी है कि जब तक आपको शरीर मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। जैसे एक बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति था, तो उसका एक नौकर नया नया उसने रखा था, नौकर, तो उसको रोज वो काम समझा के चला जाता अपने ऑफिस, और बड़ा इसका आलिशान महल जैसा। तो एक दिन इसने काम समझा के गया, तो ये नौकर अब पूरे महल को देख रहा है, के कमरे में जाके देख रहा है, तो जो खास मास्टर बेडरूम में गया, ये मालिक के बेडरूम में गया, इतना आलिशान पलंग, किंग्स बेड बोलते हैं वैसा बेड देख रहा है, इतना मुलायम, बैठ के कूदने लगा, फिर कहा कि अरे कैसा लगेगा इस पे सोना, तो चद्दर लेके लेट कर देख रहा, उसको नींद आ गई। वो मालिक आया, वो अपना बटवा भूल गया था, वो आया देख रहा ये मेरे बेड के ऊपर सोया है, दे दनादन उसको थप्पड़ पे थप्पड़, तेरे की हिम्मत तेरी, इतना मारा उसको, 5 मिनट तक मारे जा रहा। 5 मिनट बाद ये हंसने लगा, ये हंसने लगा। तो ये बोले तू हंस क्यों रहा है? बोला मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं 5 मिनट सोया और मुझे इतनी मार पड़ रही है। तुम तो रोज सोते हो तो तुमको कितनी मार पड़ती होगी। लॉजिक उसका सही था कि जितना इस भौतिक संसार में हम अपनी आरामदायक स्थिति बनाते रहेंगे उतना ही मार खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो सक्सेस रीडिफाइंड। इसलिए हम जब इस्कॉन में आते हैं तो सक्सेस का डेफिनेशन चेंज होता है। यहां पर क्या डेफिनेशन है कि जब आप जामुन के पेड़ को हिलाओगे तो आम गिरेंगे। अब अगर जामुन का पेड़ को हिला सके तो अगर कोई जामुन के पेड़ को हिला रहा है लेकिन बदले में आम गिर रहे हैं, तो वैसे ही इस्कॉन में अगर या अंतर कृष्ण भावनामृत संघ में कोई आता है बहुत ही इच्छा से आए, जामुन चाहिए, हिला रहा लेकिन आम पे आम गिरे जा रहे हैं, तो यहां आने के बाद हालांकि वो जामुन के ताक में आया परंतु उसे आम मिल रहा है, आम नहीं आम का रस, बिना गुठली बिना छिलके ऐसे आम का रस मिल रहा है और बना बना के इलायची और घी डाल के। तो इसलिए उसको बोलते हैं सक्सेस रीडिफाइंड। मॉस्को में ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगाया था, एक ब्रह्मचारी ने लगाया था और वो रोज एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लगाता बुक टेबल। तो ये लंच के टाइम डॉक्टर बाहर आया, इसने देखा है कि ये ब्रह्मचारी पता नहीं क्या बांट रहा है। तो डॉक्टर ने एक बार लंच टाइम पे बाहर आया पूछा कि तुम क्या कौन सी किताबें बांटते हो? तो ब्रह्मचारी ने कहा ये आपके बारे में। तो डॉक्टर मेरे बारे में? मेरे बारे में किताब लिखी मुझे नहीं पता, तो क्या है मेरे बारे में? तो उन्होंने किताब दिखाई साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बोला इसमें लिखा हुआ है आप जानते हो कि आप शरीर हो आत्मा हो? नहीं जानते ना, इसलिए आपके बारे में देखिए। तो उसको ये आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो उसने कहा अच्छा तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने पूछा शरीर की आत्मा की? तो उसको ये ब्रह्मचारी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि क्या इसके एकदम हाजिर जवाबी होता है ना जैसे, वैसे आंसर्स दे रहा है। तो वो ये ज्वाइन कर लिया, बाद में इनिशिएटेड डिवोटी बन गया ये डॉक्टर। तो इसलिए सक्सेस का पूरा हम रीडिफाइन करते हैं। ऐसे एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर अपने बॉम्बे के लोकल ट्रेन, तो अनाउंस कर रहा है भगवद गीता यथारूप शुद्ध भगवदगीता इत्यादि ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से अनाउंसमेंट कर रहा है। तो एक आदमी उसने बोला अरे तुम अपने संस्था के बारे में इतना गुणगान कर रहे हो, चलो सुनाओ तुम्हारे संस्था में खोट क्या है? वो भी सुनाओ तुम्हारी संस्था का खोट क्या है, दुर्गुण सुनाओ कुछ। तो ये डिवोटी ने अभी सोचो सबके सामने, तो सब लोग वेट कर रहे हैं अभी क्या बोलेगा ये, सुनाओ दुर्गुण सुनाओ। तो देखो परमात्मा ने इंस्पायर किया, इसने बोला यस इस्कॉन हैज अ फॉल्ट एंड अवर फॉल्ट इज वी डोंट डिस्क्रिमिनेट। हम सबको अनुमति देते हैं, तुमको भी, तुम जैसों को भी आ जा। तो उस समय वो जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो भगवान हमें याद दिलाकर प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, भगवान ने जो कह दिया है कि पुनर्जन्म नहीं होता लेकिन मेरे धाम को प्राप्त होता है, अर्थात वहां जन्म लेता है। इसका मतलब क्या है? वहां जन्म लेता है। तो जन्म होता है लेकिन वहां जन्म होता है, यहां नहीं। तो डिवोटी नॉन डिवोटी में अंतर क्या है कि लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज, ये दोनों में अंतर। कि अब देखो ये मैंने इसलिए यूज किया एग्जाम्पल कि लव मैरिज क्या है, जब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं, हालांकि आजकल स्थिति अलग हो गई है, आजकल एक थर्ड कैटेगरी भी है, ना तो लव है ना अरेंज्ड है, उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। ना तो लव है ना मैरिज है, एक अरेंजमेंट है। लिव इन रिलेशनशिप सुने आप लोग, कि एक साथ रह रहे हैं वो लोग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ रह रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको आजकल लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। तो मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, लिव इन रिलेशनशिप मतलब बिन फेरे हम तेरे। तो ये हिंदी का अनुवाद है, बिन फेरे हम तेरे, ये लिव इन रिलेशनशिप। तो एक है लव, लव मैरिज में क्या है कि वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए शादी होने के बाद उनको पता है कि कहां जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, सब पता है। तो डिवोटी वैसा है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, भगवान ये लड़कियां इतनी प्यारी होती हैं लेकिन बीवी न्यारी क्यों होती? जो कुंवारी लड़कियां होती उतनी प्यारी होती लेकिन बीवियां? तो भगवान बोले, लड़कियों को मैं बनाता हूं, बीवियों को तू बनाता है, इसलिए तू झेल अपनी समस्या। तो लव मैरिज का मतलब है कि वो जैसे डिवोटी पहले से भगवान से प्रेम कर रहा है, अब इस शरीर में जीते जी, इसलिए मरने के बाद उसे पता है कहां जाने वाला है। इसलिए लव मैरिज में विदाई के समय यदि वो दुल्हन रो भी रही है तो वो झूठे आंसू है, क्योंकि उसको मालूम है कहां जाने वाली है। उसी प्रकार से एक भक्त जब मरते समय उसको रोने की तो जरूरत नहीं, उसको मालूम है वो कहां जाने वाला है, इसलिए वो खुशी खुशी, जैसे कि एक लव मैरिज में दुल्हन खुशी खुशी जा रही है, उसको पता है कि वो कहां जा रही है। तो इसलिए यहां पर ये एग्जाम्पल यूज किया गया है, फॉर अ डिवोटी त्यक्त्वा नैति पुनर्जन्म मामेति सो अर्जुन, जो भगवान कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, इट्स लव मैरिज बिटवीन कृष्णा एंड द डिवोटी। तो अब इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, नॉलेज, ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड अनइंटरप्टेड लविंग डीलिंग्स। तो जब ये सारी चीजें वहां पर हैं, कहां पर, जहां पर शुद्ध प्रेम है, यहां के भौतिक लव मैरिज के विषय में नहीं कह रहा हूं, जो हम लोग कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट देन डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, वैसा नहीं। मोहब्बत के रास्ते में दर्द जरूर मिलेंगे, मोहब्बत के, एक सिंधी शायरी कर रहे थे ऐसे, मोहब्बत के रास्ते में दर्द जरूर मिलेंगे, मोहब्बत के रास्ते में दर्द जरूर मिलेंगे, अरे उस रास्ते में शराब की दुकान खोल लो, झूलेलाल की कसम बहुत चलेंगे। तो हम वो मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं। तो त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति का अर्थ होता है, जैसे यहां पर ये सारे जो है ना, जैसे स्विम सूट फॉर स्विमर्स, अच्छा स्विमिंग करने के लिए स्विम सूट अगर है स्विमर के पास तो सही तरीके से स्विमिंग कर सकता है। एक फायरमैन जो होता है उसके पास अगर फायर का सूट है तो सही तरीके से वो अग्नि से डील कर पाएगा, वैसे ही स्पेस सूट पहनकर एस्ट्रोनॉट वहां जाता है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम को प्राप्त होना है तो कौन सा सूट पहनना है, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करना है, और वो है तत्वतः जब तक मुझे तुम नहीं जानोगे। और फिर भगवान ने आज के श्लोक के अंत में अर्जुन ये नाम से पुकारा है। तो अर्जुन का अर्थ क्या है, अर्जुन का अर्थ ऋग्वेद में बताया गया है, जो विशुद्ध हो, जो सरल है और जो उपयोगी है। तो ये अर्थ है अर्जुन का। इसलिए अर्जुन वो भावनाओं में नहीं बहे, उन्होंने भगवान के द्वारा कहे गए वचनों, भगवान को तत्वतः जाना और भगवान के वचनों को तत्वतः जाना और उसे उपयोग में लाया। तत्वतः का अर्थ क्या है, उसे उपयोग में, जैसे भरत, रामायण में मेंशन है कि भरत को जब रामचंद्र जी ने अपनी पादुका दी कि जाओ फिर से अयोध्या, मेरे ओर से तुम राज्य का कार्यभार संभालो और पादुका को सिंहासन पर रखो। आप जानते हैं 14 साल भगवान वन में रहे, 14 साल में भरत ने अर्थव्यवस्था इकोनॉमी अयोध्या की 9 गुना बढ़ाई, 9 गुना, 9 times ही इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ अयोध्या। कैसे? बहुत उनका इंटरेस्टिंग तरीका था टैक्सेशन का, भरत का। तो जब भी कोई एक्सपेंसेस या नहीं, जब भी कोई टैक्स देने आता तो भरत स्वीकार करते, और जब कोई एक्सपेंसेस की बात होती तो भरत कहते पादुका से मांगो। तो सभी बेचारे हाथ जोड़ के वापस चले जाते। ऑफ कोर्स वो उनको रामचंद्र जी की सेवा में लगा रहे थे। सो दिस इज हाउ भरत वॉज इंक्रीजिंग, ही वॉज बिकमिंग उपयोगी फॉर लॉर्ड राम इवन इन लॉर्ड राम्स एब्सेंस। तो इसलिए यहां पर हम बता रहे हैं कि अर्जुन ये नाम से भगवान ने उल्लेख किया कि अर्जुन तुम न केवल विशुद्ध हो, विशुद्ध ही मुझे तत्वतः जान पाएगा, न केवल तुम सरल हो, क्योंकि जो सरल है वही मुझे तत्वतः जान पाएगा, क्योंकि तुम उपयोगी हो इसलिए तुम मुझे तत्वतः जान पाओ। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको हमारा अंतिम वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये एक हमारे आर्मी ऑफिसर, भारत की स्थिति, वर्तमान स्थिति के विषय में उन्होंने कुछ अपने शब्द कहे, बहुत पावरफुल शब्द कहे हैं कि कैसे हम न केवल उपयोगी, न केवल भारतीय बल्कि उपयोगी भारतीय बने। और ये JNU के संदर्भ में है, तो काफी पावरफुल टॉक उन्होंने कहा है।
मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि I'm born in India, भारत मेरी पहचान है, भारत मेरा सम्मान है, भारत मेरा अभिमान है। आप मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, मेरा तन, मेरा लहू, हर कुछ, मुझसे मेरी पहचान भारतीय होने की नहीं छीन सकते, और वही मेरी आइडेंटिटी है। मैं भारतीय हूं, इस पर बहुत गर्व है, और इससे ऊपर कोई गर्व मुझे चाहिए भी नहीं। मैं भारत मां का बेटा हूं, पहले, उसके बाद एक मां ने मुझे जन्म दिया है इस भारत स्थल, भारत भूमि पर। उसी के लिए कुछ लिखा था ये कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, जब कुछ हो तो बॉर्डर पर हो। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। दिस इज व्हाट आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लाइक दैट। अगर कोई पूछे कि कौन था वो, जब कोई पूछे मेरे बारे में, तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमी पे और मां तुझे सलाम लिख देना। यही परिचय था, है और रहेगा। आजकल बहुत एक मुद्दा चल रहा है देशभक्ति, कुछ लोगों ने उसे हिंदुओं से जोड़ दिया, कुछ ने मुसलमानों से जोड़ दिया, कुछ ने सिखों से, कुछ ने ईसाइयों से। एक बात याद रखना, हम पहचान है एक ऐसा महाविद्यालय, एक ऐसी यूनिवर्सिटी। इट्स लाइक एन यूनिवर्सिटी, इट्स लाइक अ कॉलेज, द कंट्री इज लाइक कॉलेज। वी मे हैव डिफरेंट विंग्स, वी मे हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट वी ऑल बिलोंग टू वन कॉलेज, एंड दैट कॉलेज इज भारत, राष्ट्र। आप उसको हुब्बुल वतनी कह लें उर्दू में, अरबी में, उसको आप जननी जन्मभूमिश्च कह लें आप संस्कृत में, आप मादरे वतन कह लें, वतन की इज्जत कह लें, आप कुछ भी कह लें, आज बहुत जरूरी हो गया है उस ट्रेटर, उस गद्दार, या बेहतर लैंग्वेज में उसको गद्दार और चूतिया कहेंगे, उसकी बात करना जो आज की डेट में बड़ा सेलिब्रिटी बन के फिर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्सन जिसने हर फौजी और हर इस भारत माँ के बेटे को हर्ट किया है। आज उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो चुका है। न हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है गद्दार और बेईमानों से, जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। पिछले 2-3 महीने इट हैज बीन डिस्टर्बिंग मी अ लॉट। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ सोल्जर, आई बीइंग अ सिंपल सन ऑफ दिस मदरलैंड फील हर्ट, डिसहार्टेंड, and at the same time I feel pity for them. बुरा लगता है। कारण यह, लोग कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा है, करने पर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सम्मान करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, और उसके आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। उसके आदेश का पालन करते हुए कुछ गद्दारों को आज भी छोड़ रखा है, वरना ऐसा है काम ही हड्डियां तोड़ने और जान लेने का हिंदुस्तानी फौज करती है। किसी ने कहा, मैं उन गद्दारों का शायद नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज वो इतना भी डिजर्व नहीं करते कि उनका नाम इस जुबां पर आए। बट एक चीज बोलना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों ने यह कहा कि भारतीय सेना रेपिस्ट है। अगर घरों में बैठे हो ना, और अगर तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माएं घर से निकल के जा रही हैं, तो सिर्फ ये हिंदुस्तानी फौज है जिसकी दम पे तुमने भाई होने का, बाप होने का फर्ज नहीं निभाया होगा। मगर दिस दी ओनली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस विच मेंटेन द डिग्निटी ऑफ अ सोल्जर एंड मेंटेन्स दैट ब्रदरहुड। आपकी बहनें, आपकी माएं अगर सुरक्षित है, तो वो भारत की सेनाएं हैं जिनके कारण है। बोलने के पहले सोचा करो। और किस्मत बहुत अच्छी थी कि फौज के सामने नहीं बोला, वरना जो हीरो बना दिया ना इस देश में, फौज तुम जैसों को छोड़ती भी नहीं। मगर ये भारत का संविधान है, दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने बांध रखा है हमारे हाथों को। क्रोध करना मेरी आदत नहीं है, मगर आता है गुस्सा। इसलिए आता है क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि अक्सर मैंने झूठे लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है। जो सच बोलता है और दिल से बोलता है उसको गुस्सा बहुत आता है, और ये गुस्सा इस बात का है कि इस देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है, इसलिए अभी तक बचे हुए हो। फौज को रेपिस्ट बोलते हो? आस्क योर सिस्टर्स एंड योर मदर्स, आस्क योर फैमिली मेंबर्स, इफ देयर आर 10 यंग बॉयज एंड इफ देयर इज अ सिंगल सोल्जर, आस्क अ गर्ल, आस्क अ यंग गर्ल, वेयर वुड शी गो for the help and whom would she ask for the help? And I ensure this, that girl would go to a soldier and ask, and she'll say one thing, certainly she'll say, and she'll use this word, bhaiya meri madad kijiye. Kya hai ye jawani samal nahi rahi hai to batao? 23 saal mein shaheed azam Bhagat Singh, Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Chandrasekhar Azad bada bada kaam karke chale gaye. Bahut garmi hai, अरे सेना ज्वाइन करो, भारत की फौज आओ, दुश्मनों से लड़ो ना, घर के अंदर क्यों दुश्मनी का माहौल बनाते हो? एक बात कही गई जिस पे बड़ा दर्द हुआ कि अफजल, अरे वो गद्दार टेररिस्ट उसके लिए बोलते हो, उसको हीरो बना दिया तुमने, वरना कोई जानता भी नहीं था। ऐसे बहुत आए गद्दार, बहुतों को फांसी लगाई। उसको कहा गया कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आई फील अशेम फॉर दीज गाइज। तेरे कातिल मतलब क्या है? What do they want to say? तेरे कातिल कौन हुए? भारत का संविधान, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फांसी सुनाई है, हर हक दिया इस बात का कि पहले आपकी पिटीशन दायर हो, आपके ऊपर पूरा मुकदमा चलाया गया। अरे समस्या यह है, हम तो आतंकवादियों को भी क्या बोलूं, भाषा फिसल जाएगी तो बहुतों के परखच्चे उड़ जाएंगे। आप कहते हो कि तेरे कातिल, चलो इट मींस यू आर ब्लेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के अगेंस्ट में कहने की, ना हमने तुम्हें छूट दी है और ना आजादी, आजाद हुए हो तो भी इस फौज के कारण और उन क्रांतिकारियों के कारण जिनने अपना लहू बहाया है इस मिट्टी के लिए, तब बना है भारत का संविधान। यू कैन नॉट इंसल्ट, यू कैन इंसल्ट मी एज एन इंडिविजुअल, यू कैन इंसल्ट वन पर्सन, मतलब जो पीठा, जो न्यायाधीश थे, जो वो लोग थे जिनने फांसी की सजा सुनाई, आप उनको कह रहे हैं कि वो कातिल थे। अरे धिक्कार है आपके ज्ञान पर, आई फील अशेम्ड फॉर इट। पहले आप अपने फैक्ट्स क्लियर करें। अरे जेएनयू के एक लौंडे ने ये कह दिया तो उसको हीरो बना दिया, एंड नो वंडर्स अगली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठेगा तुम्हारी छाती के ऊपर। हीरो बनाने वाले तुम हो। मुझे किसी से पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम रखने की। लेकिन एक बात याद रखना, किसी एक बेवकूफ ने यह कह दिया कि भगत सिंह जैसा है। अबे शर्म करो एंड क्लियर योर फैक्ट्स बिफोर यू कंपेयर दैट गाय विद रेवोल्यूशनरीज। कौन थे वो, किसकी बात कर रहे हो? उस इंसान की हु कैन नॉट डिलीवर टू राइट सेंटेंसेस इन वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हो जो भारत के संविधान को गद्दार कह रहा है। आप उनकी बात शहीद आजम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे लोगों से कर रहे हो। कौन थे वो पता है तुम्हें? तुम एक क्लास के एक छोटे से सब्जेक्ट को पढ़ के ज्ञानी बताते हो और तुम ये कहते हो कि क्रांति लाओगे। क्रांति होती क्या है? क्रांति सबसे पहले शुरू होती है राष्ट्र से। भारत मां या मिट्टी, आई डोंट वॉन्ट टू नेम दिस नेशन भारत माता और एनीथिंग, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग। ये मेरी तो माँ है और मेरे जैसे कई पागलों की माँ है। याद रखना, बहुत छूट मिल गई है, अपनी आजादी का गलत उपयोग मत करो, वरना अगर छूट देना आता है तो लगाम लगाना भी आता है। बोलने की आजादी है, ठीक है, हमने आजादी दी है, बट वो आजादी किसने दी है? द फ्रीडम has been given to you by the constitution of this country. The Honorable Supreme Court has some guidelines. The Honorable constitution of this country has some guideline. And we must respect that. आज आप एक बंदे को जिसको जमानत पर छोड़ा गया है उसको हीरो बना दिया। मेरा उस बच्चे से और मेरा उस लड़के से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मगर याद रखना, इस देश का हर दुश्मन मेरा दुश्मन है। इस भारत माता, इस मिट्टी के ऊपर कोई भी बात करेगा, दैट गाय, दैट पर्सन हैज टू फेस मी एंड द सोल्जर्स ऑफ दिस कंट्री। आप कैसे भारतीय सेना को रेपिस्ट कह सकते हो? शर्म करो उस सेंटेंस के ऊपर। अगर आज भी बच्चियां सुरक्षित हैं, इफ द इंडियन यूथ, इफ एवरीबॉडी, हूएवर इज डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू डू, इफ दिस फ्रीडम हैज बीन गिवन टू देम, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, that Indian Army, Navy and Air Force, the Indian Armed Forces are fighting for you day and night. जब तुम सोने जाते हो तब उनकी ड्यूटी का वक्त शुरू होता है। शर्म खाओ इस बात के लिए। और याद रखना, भारत को तोड़ने की कोशिश मत करो, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ थी, है, कुछ गद्दारों से और कुछ बेईमानों से। And I'm telling you on behalf of every Indian, यार आप क्या बात करते हो? मैं इस देश के यूथ का सबसे बड़ा फैन हूं और मैं कहता हूं मैं इनका फैन हूं, भारतीय युवाओं का, the Indian youth, I am your biggest fan। और याद रखना, अपनी आजादी का गलत उपयोग मत करो, क्योंकि आप जिस ट्रैक पर ले जा रहे हो तुम इसलिए बचे हो आज तक क्योंकि भारत के संविधान ने आज भी जानवरों और कुत्तों को मारने की आजादी नहीं दी है। अगर होती तो कब के निकल चुके होते, और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि तेरा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगी। और अगर नहीं किया, कीप माय वर्ड्स एंड टेक माय वर्ड्स, ये चेहरा याद रखना। हम बोलते कम है, घसीटते और मारते ज्यादा है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।
हरे कृष्णा। तो हम अर्जुन जैसे योद्धाओं से क्या सीखते हैं? ये लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस इज मच बेटर देन सैक्रिफाइसिंग वन्स लाइफ, कि एक बलिदान का जीवन जीवन के बलिदान से कई गुना ज्यादा उपयोगी होता। इसलिए अर्जुन ने एक ऐसे योद्धा की भूमिका, एक ऐसे हम यदि कहें कि भारतीय की भूमिका निभाई, क्योंकि वो भरत वंश के थे, ऐसे भारतीय की भूमिका निभाई है कि जिन्होंने जीते जी और अपने जीवन के बलिदान से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए न केवल विशुद्ध भाव से, न केवल अपनी सरलता से, जो कि उनके नाम को उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान श्री कृष्ण के लिए वो उपयोगी बने। तो आइए ये जो श्लोक हम इतने बुधवारों से जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वअर्जुन, कि अर्जुन के पद चिन्हों पर चलकर हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को गीता के द्वारा तत्वतः जाने, उनके जन्म उनके कर्मों को, और उसके उपरांत उनके सेवा में उपयोगी बने। और ऐसे यदि हम अपना जीवन बलिदान करेंगे तो अवश्य ही जो भगवान ने आश्वासन दिया है कि हम इस जन्म के उपरांत हमारा अगला जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण की भूमि गोलोक वृंदावन में। हरि बोल। जय भगवत गीता ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।